आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है।
ये है नेक्स्ट 100 इयर्स मीडिया नेटवर्क, मीडिया नेटवर्क, और आप सुन रहे हैं प्रेपो एजुकेशन रेडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।
प्रेपो एजुकेशन रेडियो में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम अपने देश के कुछ ऐसी हस्तियों से आप सबको मिलवाने जा रहे हैं जो युवाओं को रोजगार के नए द्वार खोलेंगे, साथ ही प्रेरणा देंगे कि वो क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनसे रोजगार तो मिलेगा ही और देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला भी। तो आइए हम आज एक खास मेहमान से बातें करने वाले हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं आर्मी से रिलेटेड एक्स कर्नल वसंत बल्लेवार सर से। नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आपका परिचय हमारे सभी श्रोताओं को हो जाए। आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई कैसे हुई और कैसे आप इस क्षेत्र में आए?
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और मेरे सभी जो दर्शक श्रोताए हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और अपने श्रोताओं से बातचीत करने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं जैसा कि बताया कर्नल वसंत बल्लेवार हूँ और मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है वहाँ पे सिंधेवाही टाउनशिप है और वहीं से मेरा बेसिक प्राइमरी एजुकेशन हुआ है। एंड जैसे चंद्रपुर जिला परिषद स्कूल से मेरा इनिशियल पढ़ाई हुई और उसके बाद दसवीं क्लास,
मतलब बहुत छोटे से गांव से आप रिलेटेड हो सर।
बहुत छोटे से गांव से रिलेटेड हूँ। असल में जब हमारी जब पढ़ाई हुई थी उस टाइम हमारे गांव में सेंटर्स भी नहीं थे एग्जाम के, तो मैं बाहर जाना पड़ता था।
जी जी।
और ऐसे बैकग्राउंड से मैं आया हूँ और एक मेरे लिए एक भगवान का आशीर्वाद मुझे, मैं जिस परिवार में मैं मेरा जन्म हुआ
जी,
मेरे पिता श्री रामचंद्र बल्लेवार एक स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे और उनके उनका जो इतिहास रहा बहुत ही शौर्य भरा रहा है। जीवन में 6 बार वो अंग्रेजों की जेल में गए थे
जी।
और हमारे गांव से सिर्फ वो एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत
आपके लिए प्रेरणा थे वो, आपके लिए
तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत्र तो वही रहे हैं जिन्होंने देशभक्ति की भावना हमें बचपन से ही देखने को मिली।
जी सर।
बहुत कठिन परिस्थितियों में हमने समय निकाला।
जी सर।
मेरी माता श्री अनुसया बाई बल्लेवार उनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि पिताजी जब स्वतंत्र संग्राम में लगे हुए थे
तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी
परिस्थितियों में अपने बच्चों को संभालना। वैसे मैं स्वतंत्र लकी हूँ कि मेरे पिताजी ने जो स्ट्रगल किया, मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। लेकिन मेरे भाई बहन जो है, बड़े भाई और मैं सबसे छोटा हूँ, मैं 4 बहनें और 3 भाई, हमारा 7 भाई बहनों का परिवार है और मैं सबसे छोटा हूँ। तो मुझे बातें जब बताई जाती है घर में और जब मैं सुनता हूँ इतने सालों में, तो मुझे याद है मेरे भाई बहनों ने बहुत कठिन समय निकाला क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरे माँ के ऊपर थी। तो उन्होंने हमारी पढ़ाई और हमारा सब कुछ ध्यान रखा। उनको वो एनर्जी ऊर्जा कहाँ से मिलती थी, शायद मेरे पिताजी से मिलती होगी और उनके अंदर जो भाव था देशभक्ति के प्रति वही हमें आया। और इस तरह से हमारा बचपन एक बहुत ही
कठिन परिस्थितियों में था
और देशभक्ति पूर्ण परिस्थितियों में था। एक उसका बहुत बड़ा
वो योगदान आपकी मतलब जिंदगी में आगे रहा, माता पिता का। जी सर,
माता पिता
बहुत अच्छी बात है। सर जो आपने गांव में पढ़ाई की है ना जिला परिषद स्कूल से, फिर आगे की पढ़ाई कहाँ और कैसे की आपने?
देखिए मेरा असल में 10+2 जब हुआ था मराठी मीडियम में था, बहुत मराठी मीडियम में से जब हम नागपुर में मेरा नेक्स्ट कॉलेज एजुकेशन हुआ, मैंने वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री हासिल करी पंजाब कृषि विद्यापीठ नागपुर से।
जी सर।
तो एक वो ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम मराठी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, बहुत ही स्ट्रगलफुल था और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था।
सही बात है। एक तो गांव से रिलेटेड और उसके बाद में फिर सही बात है सर।
गांव से आना, उसमें मराठी मीडियम में अपना बेसिक पढ़ाई करना बचपन से 12वीं क्लास तक।
जी सर।
और उसके बाद सडनली आप इंग्लिश मीडियम में मेडिसिन साइंस में जब आते हो, किताबें ना दो बुक्स सब किताबें बड़ी बड़ी होती है। और एनिमल हस्बेंड्री साइंस फिजियोलॉजी एनाटॉमी एवरीथिंग है ना,
काफी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको।
किताब इंग्लिश के सिवा नहीं होती।
जी सर।
मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग समय था वो।
जी सर।
मैं समझ तो पाता था लेकिन लिखने में बड़ी कठिनाई होती थी।
जी सर।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर मेरा हुआ उसमें मैं सबके सब सब्जेक्ट में फेल हुआ और वो मेरे लिए बहुत ही डिस्करेजिंग।
क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद दरवाजा बंद दरवाजा बंद, सुना नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। ये अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना, शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए, साबुन से हाथ धो लीजिएगा।
मतलब जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिए भी एक सीख है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में फेल होने के बाद आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत अच्छी
और,
बात है।
और एक मैं खुद इस परिस्थिति का उदाहरण हूँ कि जिसको बोलते हैं ना कि फेलियर फेल के आगे ही वहाँ पे जीत की संभावना।
हाँ, सही बात है।
और सेकंड सेमेस्टर में मैंने इतनी मेहनत करी
जी,
और उसमें मेरे हमारे 64 स्टूडेंट्स थे, उसमें सेकंड सेमेस्टर में अव्वल नंबर पे आया मैं।
देखिए।
और उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं,
नहीं देखा सही।
मेरा एकेडमिक करियर में एक वही फर्स्ट सेमेस्टर
टर्निंग पॉइंट रहा, वो आपका
टर्निंग पॉइंट था। और वही मैं उस सर्टिफिकेट को बहुत प्यार से देखता हूँ।
सही बात है ना सर।
और उस की वजह से ही मैं आगे करने की जिद आई मेरे में।
जी सर।
और ये बात तो हम सुनते हैं मगर मैंने खुद ये अनुभव करी है, इसलिए मैं फेलियर को कभी भी डिस्करेज नहीं करता। मैं उसे जो बोलता है फेल हुआ है तो मैं उसे
हमेशा
तो तुम आगे और अच्छा करने वाले।
मतलब मुझे भी अच्छा लगा सर ये सुन के कि आप कहीं तो एक आपको एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम की वजह से आप आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और सर आप ये तो पढ़ाई का रहा आपके, और आगे आप ये अचानक से जैसे आपने कहा कि आपने वहाँ से लिया एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, तो आप ये ट्रैक कैसे चेंज हुआ आपका ये जो आर्मी की तरफ से, ये मुझे पूछना था।
हाँ ये बहुत अच्छा सवाल।
जी जी हाँ, क्योंकि ये मेल नहीं खाता है ना।
हाँ ये मेल नहीं खाता। एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस और आर्मी में करना लिए किस तरह से?
जी वही। हाँ
असल में इसका ये होता है कि अपने विद्यार्थियों को बहुत से स्टूडेंट्स और समाज में इसके बारे में पता नहीं है।
हाँ, सर, वही बात मैं कहना
कि आर्मी क्या है। हम हमारे दिलों में जो आर्मी के विषय में इमेज है वो फिल्मों से आई हुई है, खास करके उस एरिया में जहाँ पर आर्मी के जवान या अधिकारी है नहीं। उस एरिया में हम जो फिल्मों से देखते हैं वही समझते कि आर्मी में जाना है ना सिर्फ लड़ना है
और लड़ना है और सीमा पर जाना है, शहीद होना है,
शहीद होना है
यही। हाँ जी सर।
तो इस तरह की भावना जनरल पॉपुलेशन में ऐसा ही लगता है।
जी सर।
तो असल में आर्मी एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें सभी तरह के सर्विसेज की आवश्यकता होती है।
जी सर।
और वहाँ पे जैसे इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है
जी,
और कैवलरी है, एएससी स्कोर है, एमई है, इसमें सब में कुछ एलिमेंट्स तो है जो फाइटिंग के लिए होते हैं।
जी सर।
जो फ्रंट इसमें जाते हैं और फाइट करते हैं, दूसरे सपोर्टिंग आर्म्स भी होते हैं इसमें।
जी जी।
और जैसे आर्मर्ड कोर है वो टैंक्स के द्वारा आगे बढ़ते
हैं। जी जी टैंक्स का है।
और कैवलरी है वो हॉर्सेस के द्वारा चलता, हॉर्सेस आने से हॉर्सेस को देखभाल करने वाले होते।
जी जी सर,
साथ उनका राशन पानी है सब कुछ, देखने वाले भी आर्मी के।
तो आप किस क्षेत्र में आए सर, आर्मी के कौन से क्षेत्र में आपने प्रवेश किया?
हमारा प्रवेश इसी तरह से जिस तरह से जवानों के लिए मेडिकल कोर है, आर्मी मेडिकल कोर, जिसमें डॉक्टर्स और बाकी लोग जाते हैं।
जी सर।
आर्मी में रिजॉन्ट एंड वेटनरी कोर, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है।
जी सर।
जिसमें वेटनरी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स वो आते हैं, और उनका मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि एक तो हेल्थ केयर, एनिमल्स हेल्थ केयर, दूसरा जो आजकल
कैमल्स का भी यूज होता है ना, जहाँ राजस्थान
में कैमल है। शुरुआत में कैमल तो आर्मी में भी थे, अभी BSF में हो गए। आर्मी में कैमल बटालियंस नहीं है, शुरू में थी। उसके सिवा कैवलरी बटालियन तो आपने देखा ही है, सुना भी है, राजपथ में देखा था, इसमें हमेशा देखते हैं, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड में फोर्सेस है सब। और इसके सिवा एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो आम जनता को पता नहीं है, वो है आर्मी डॉग्स। तो आर्मी डॉग्स की ट्रेनिंग करना आपने देखा होगा, एवलॉन्च रेस्क्यू ऑपरेशन में।
अक्सर हम लोग सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही डॉग के बारे में जानते हैं। आर्मी डॉग्स का मैं भी सर पहली बार ही सुन रही हूँ।
हाँ
जी सर।
तो आर्मी डॉग्स बॉर्डर एरिया में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें डॉग्स लीड करते हैं। और जैसे रोड ओपनिंग होती है, आपको देखा होगा पुलवामा में अभी रिसेंटली जब पास्ट हुआ था ID डिटेक्शन करना।
जी सर।
ये सभी चीजों में जैसे इन्फेंट्री बटालियन इन्फेंट्री मार्च करने के पहले उस रोड को या उस रोड को बाकी पब्लिक के लिए ओपन करने के पहले उस रोड को सैनिटाइज किया जाता है।
जी सर।
तो सैनिटाइजेशन मतलब है कि उस रोड को कोई आईडी तो नहीं या कोई बॉम्ब का खतरा तो नहीं, ये सबसे पहले आर्मी का कॉलम उसके ऊपर चल के जाता है।
सही बात।
और वो लोग उसको क्लियर करते हैं, उसके लिए डॉग्स का यूज होता है, जो माइंड डिटेक्शन डॉग्स बोलते हैं।
सही सर। हाँ।
तो माइंड डिटेक्शन डॉग उनकी जो कैपेबिलिटी है,
मोस्टली एयरपोर्ट पे भी ऐसा किया जाता है ना,
एयरपोर्ट
देखा है मैंने, एयरपोर्ट पे देखा है सर।
हाँ, तो एयरपोर्ट के डॉग्स होते हैं एक्सप्लोजिव डिटेक्टिव डॉग, वो सामान में रखा हुआ वो सुनते हैं, या कोई
उसी तरह का काम आर्मी के डॉग करते हैं।
उसे आर्मी के डॉग माइंड डिटेक्शन करते, जमीन के अंदर जो गड़ा होगा।
हाँ जी सर।
उसको निकालते हैं, या फिर कहीं पेड़ में लगा हो, या कहीं कहीं पुलिया के नीचे लगाया हो, इस तरह के जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो आर्मी डॉग्स करते हैं। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा एवलांच जो होता है हिमालयन रेंजेस में या कहीं पहाड़ियों में, सियाचिन ग्लेशियर्स में जब एवलांच होता है, तो पूरे एवलांच में सब कुछ अंदर दब जाता है ना, कोई पता नहीं चलता।
तो जमीन के दो
तीन साल पहले एक बहुत बड़ा एवलांच हुआ था, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे डॉग्स थे, वो अपनी ताकत से सुनने की शक्ति से उनको ढूंढ के निकालते है कि यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ये सब चीजों की ट्रेनिंग जो है वो हम लोग रिमोट वेटनरी कोर का एक सेंटर है मेरठ में।
मैं भी खुद पहली बार जान रही हूँ ये बात। हाँ,
तो वहाँ पर ये आर्मी डॉग्स को अलग अलग डिसिप्लिन है, जिस तरह से आर्मी में बाकी जगह डिसिप्लिन सिग्नल मैन है या इन्फेंट्रियन है या।
तो आपका प्रवेश इस तरह से हुआ सर वहाँ
हमारा
के लिए?
हाँ, तो उसमें एक मैं जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ कि इस सेंटर में आर्मी डॉग्स की ब्रीडिंग होती है, उनको 6 अलग अलग ट्रेड्स है, लाइक ट्रैकर डॉग, इन्फेंट्री पेट्रोल डॉग, इन्फेंट्री पेट्रोल आगे उसको चेक करते हैं, दूसरा एवलेंज रेस्क्यू डॉग और गार्ड डॉग और माइंड डिटेक्शन डॉग और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग, इस तरह से 6 ट्रेड्स है जिसमें हम लोग उन डॉग्स को ट्रेन करते हैं, और साथ में डॉग हैंडलर्स को, बिकॉज सिर्फ डॉग को ट्रेन करके काम नहीं चलता है, उसके अपने डॉग हैंडलर को भी उनके एक एक जो ग्रुप होता है वो डॉग एंड हैंडलर।
जी।
इंडिकेट किया वो हैंडलर समझता है, दूसरा नहीं समझ सकता।
जी सर, कुछ उनकी साइन लैंग्वेज होती है।
साइन लैंग्वेज होती है
जी सर।
साइन लैंग्वेज वो डॉग हैंडलर ही समझ सकता है और डॉग अपने डॉग हैंडलर को ही साइन लैंग्वेज में बताता है
जी सर।
तो इसलिए दोनों चीजों को हम लोग ट्रेन करते हैं मेरठ
जी सर। बहुत बहुत ही बढ़िया सर, और कितना कठिन काम होगा ये मैं समझ सकती हूँ सर।
हाँ
बहुत ही।
तो इस ये एक फील्ड के बारे में बता रहा था मैं कि किस तरह से हमारा, मैं जिस फील्ड में आया हूँ वेटनरी साइंस
जी जी जी, जी
हाँ। ये हमारा जो सिलेक्शन है वो नॉर्मल जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB इलाहाबाद बेंगलोर चार पांच जगह जो सिलेक्शन करते हैं।
हम लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या?
डिजिटल इंडिया है दीदी। अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और देखिए भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ।
अभी कुछ चेंजेस हुए हैं सर, अभी तो आपका वक्त और अभी के वक्त में कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेक्शन में?
सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर में थोड़ा जो टाइम टू टाइम अपडेट तो होते ही है साइकोलॉजिकल पे
जी,
ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, कमांड टास्क, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह, वो वही है सेम फॉर्मेट में, मगर कुछ चेंजेस समय के हिसाब से हुए है। 5 days का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है अलग अलग वो उसी तरह से है
जी।
तो इस तरह से जैसे वेटनरी का है उसी तरह से एग्रीकल्चर फील्ड के जो लोग है उनके लिए मिलिट्री फार्म सर्विसेज है। ओके,
उनके लिए भी है। अच्छा,
उनके लिए भी है। और किसी ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है या पॉलिटेक्निक किया है उनके लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स है
जी सर।
और तो कार मैकेनिक है और ये सब चीजें जिसको भी कोई भी प्रतिभा उसके अंदर है कोई भी इंसान में
वो प्रतिभा को पहचान के
उसका उसी तरह से इस्तेमाल आर्मी में किया जाता है। इसके सिवा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या आपकी पर्सनल क्वालिटीज होती है, यू आर अ गुड ओरेटर, आप कुछ गेम्स में बहुत अच्छा करते हैं, तो आर्मी में आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पुणे में ही है आर्मी फिजिकल।
मेरी जानकारी में सर नेशनल प्लेयर जो होते हैं उनके लिए कुछ खास जगह होती है क्या आर्मी में?
हाँ, यहाँ पर उनके लिए जो जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी में कोई जवान अच्छे से ओलंपिक लेवल में गया या नेशनल लेवल में गया उसके लिए एक्सेलरेटेड प्रमोशंस की सुविधा है। और
मेरा सवाल ये इसलिए था सर कि हर कोई तो उतना मोस्ट टैलेंटेड नहीं हो सकता, मतलब अलग अलग स्तर होते हैं सबके, मतलब पढ़ने के उनमें तीन तरह के लोग होते हैं, जो थोड़ा सा कम पढ़ने में होते हैं पर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, जो बीच का स्तर होता है वो दोनों नहीं होते हैं, और जो उच्च स्तरीय होते हैं जैसे मैंने कहा ना ऑफिसर्स के लिए वगैरह कि ये करेंगे, तो ये जो स्पोर्ट्स का इसलिए पूछा कि जिनको नहीं है इंटरेस्ट इतना, वो लोग पढ़ाई में नहीं है तो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी ये बहुत सही है ना सर?
हाँ हाँ बिल्कुल। आप देखिए मिलिट्री स्पोर्ट्स, मिलिट्री स्पोर्ट्स ओलंपिक्स भी होते हैं, कंडक्ट होते हैं
जी सर, जी सर।
और ये आपने सुना ही होगा लास्ट कुछ साल पहले हैदराबाद में हुआ था मिलिट्री ओलंपिक्स ऐसे ये है। और जैसे कोई जवान 10वीं या 12वीं क्लास होने के बाद उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी, फिजिकल टेस्टिंग और मेडिकल फिटनेस, ये दो प्राइमरी चीजें होती है और ये मैं जवानों की एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जवान जब आर्मी में जब आता है तो उसके आने के पहले आपने सुना होगा BROs, देन रिक्रूटिंग सेंटर्स होते हैं अलग अलग जगह है ना, तो देन रेजिमेंटल सेंटर्स होते हैं, हर बटालियन रेजिमेंटल सेंटर्स है, तो उनमें दो रास्ते है आर्मी के अंदर, एक 10th या 12th पास स्टूडेंट को आने के लिए
जी सर,
या तो BRO के थ्रू जाए जिसके डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जिला सैनिक अधिकारी के अंदर में सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह होती है, आर्मी के लोग आगे सिलेक्शन करते हैं, उसमें बेसिकली दो बातों का ध्यान दिया जाता है, एक तो फिजिकल कैपेबिलिटी, कोई मेडिकल अनफिटनेस ना हो, एंड दूसरा एक नॉमिनल इंटेलेक्चुअल टेस्ट होता है जो जो इंसान की बौद्धिक क्षमता देखने के लिए,
जी सर।
और दिया जाता है, वो तीन टेस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। जहाँ तक फिजिकल फिटनेस की बात आती है, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि हर एक वो व्यक्ति जो दिखने में लंबा तगड़ा है वो आर्मी के लिए फिट है, और जो जो छोटा मोटा है वो आर्मी में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं,
मेरी भी यही सोच है सर, मैं खुद भी यही सोचती हूँ।
हाँ, ये बहुत बहुत
गलत सोच है,
में गलत फहमी है। ये जो स्टैंडर्ड लिखा है, जो गया है, लिखा गया है आर्मी में, वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से है। जैसे राजस्थान के जो जवान आते हैं, वो उनका हाइट स्टैंडर्ड अलग है, सबसे ज्यादा है,
सही
है ना। वो तो मिनिमम 6 फीट उनकी हाइट होनी चाहिए।
जी, जी, जी।
और जैसे महाराष्ट्र के है, वो 5.5 फीट 6 इंचेस हाइट से भी चलते हैं। गोरखा का और कम है, नेपाली और कम है,
मतलब जो स्टेट के हिसाब से उनके जिस तरह का उनका है रहन सहन, और वो उस हिसाब से।
हाँ हाँ, तो स्टेट के हिसाब से उनकी बोनाफाइड जनरल हाइट उस स्टेट की ज्यादा है। राजस्थान, हरियाणा एवरेज हाइट
मतलब, मतलब वहाँ के है वैसे।
हाँ हाँ, तो उसे हाइट स्टैंडर्ड उस तरह होता है। फिर इसके साथ में फिर कुछ गिनी चुनी मेडिकल अनफिटनेस होते हैं जो आर्मी के लिए सुटेबल नहीं होती, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। कलर अगर पहचानने की क्षमता नहीं
तो आर्मी के, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने।
तो उन लोगों ने इसके लिए प्रयत्न करके फायदा नहीं, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है।
कलर ब्लाइंडनेस,
ये कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता, वो अनुवंशिक
होता है।
और फिर दूसरे नॉकिंग नीज, जिसके नीज टकराते हैं दौड़ते वक्त,
क्योंकि वो दौड़ नहीं पाएगा ना,
दौड़ नहीं पाता है ना। नॉकिंग नीज है, फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट वाला भी उसका ग्रिप नहीं रहता रोड पे उन्हें चलते वक्त ना, इसलिए फ्लैट फुट, नॉकिंग नीज। देन हियरिंग प्रॉब्लम है किसी में,
कोई सुनने की क्षमता थोड़ी कम है,
नहीं है। और आईसाइट अगर नॉर्मल नहीं है ना,
बहुत ज्यादा है,
तो इस ये कुछ मोटी मोटी अनफिटनेस है, जो जिनको पता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने नहीं करने में कुछ फायदा नहीं, बिकॉज उसको दिक्कत हो सकती है। एंड बाकी छोटी मोटी टेम्प्ररी अनफिटनेस होती है, वो कुछ अनफिटनेस जैसे ये अपना लिवर का साइज का बड़ा हो जाना,
जी सर, जी।
वेट कम होना है ना, या वेट ज्यादा होना, ये चीजें टेम्प्ररी अनफिटनेस में आती है। और अगर मेडिकल फिटनेस के दौरान अगर इन चीजों को दिखाया गया, तो उसको समय दिया जाता है कि आप 2-3 महीने के अंदर आपने अपना ये ठीक करिए, अपना वजन कम करिए या बढ़ाइए, है ना, और आप दोबारा टेस्ट के लिए आइए।
होता है कई बार,
ऐसे बहुत बार होता है, दोबारा टेस्ट आने के बाद अगर उसको फिट पाया गया,
सेलेक्ट
हो जाता है। तो ये इंडिविजुअल की इसके क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में फिर अपील भी होती है, अपील सेकंड चांस भी दिया जाता है मेडिकल फिर लोगों को। तो ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है और फेयर है, उसमें कोई भी हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं होती।
बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है।
क्यों?
सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में।
बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना?
हाँ।
क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे, उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग, और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए।
देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है।
सर, आप एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर, कि जैसे अभी शुरू में ऐसा होता कि साइंस ग्रेजुएटी चाहिए या साइंस ही फैकल्टी आपकी चाहिए, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है शायद ना, कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या कॉमर्स से आ रहे हो तो भी आपको प्रवेश है, है ना सर?
आप अभी ग्रेजुएशन एंट्री की बात करें, जनरल में स्पेसिफिकली ऑफिसर कैडर जो ग्रेजुएशन के लिए, या जवानों में भी ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई साइंस ग्रेजुएट ही होना चाहिए।
ये बच्चों के मन में सवाल होता है सर, इसलिए मैंने पूछा।
कुछ कुछ विंग्स में सिर्फ इंजीनियर्स ले जाते हैं, जैसे नेवी है, नेवी में जितने भी ऑफिसर्स है वो सब इंजीनियर्स होते हैं, वो उसमें कॉमन अदर सब्जेक्ट की एंट्री नहीं होती है। लेकिन नेवी में भी एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, और एजुकेशन, नेवल एजुकेशन, उसमें उसमें इंग्लिश टीचर्स, मैथमेटिशियंस और हिंदी टीचर्स, उनके लिए एंट्री होती है एजुकेशन फील्ड में।
अच्छा,
अदर देन दैट
एजुकेशन फील्ड में भी होती है।
नेवी में जो एजुकेशन विंग है उसमें अदर ग्रेजुएट्स आते हैं
जी सर,
लेकिन बाकी हर जगह पे सिर्फ जनरल नेवल कैडर में
जी सर,
वो बीटी, बीटेक और बीई, यही इनकी एंट्री
है जी सर। और सर ऐसा भी है कि जैसे कंप्यूटर क्षेत्र में कोई किसी ने कंप्यूटर में जैसे बीसीए वगैरह जैसे डिग्री है उन लोगों के लिए भी कुछ है वहाँ आने के लिए प्रवेश करने के हेतु कुछ क्षेत्र जो है जहाँ वो
कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर्स के लिए स्पेसिफिक अलग से एंट्री नहीं होती
हाँ, जी।
लेकिन जिन्होंने जैसे सिग्नल है सिग्नल कोर ये कम्युनिकेशन में या बी में जो बी जिन्होंने किए है बीटेक किया है इन कम्युनिकेशन, तो ऐसे जगह है जहाँ पर इंजीनियर्स की एंट्री होती है जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियर्स, आपने सुना होगा बंगाल इंजीनियर ग्रुप जो बी यहाँ पे है, तो इसमें अफसर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है टेक्निकल ग्रेजुएट है उनकी भी एंट्री होती है, और बाकी भी आर्म्स में कोई भी सब्जेक्ट का हो कॉमर्स साइंस आर्ट कंप्यूटर्स एनीथिंग कोई भी विषय के ग्रेजुएट्स जा सकते हैं। अभी इसमें दो तरीके की एंट्री कराता हूँ, एक तो होती है ऑफिसर्स कैडर के लिए भी एनडीए के थ्रू।
एनडीए के थ्रू, ये सर मन में वही सवाल आया था मेरे के 12th के बाद जो
हाँ 12th के बाद एक तो मैंने बताया जवान के लिए जा सकते हैं आर्मी में एज ए सोल्जर बन जाए
और एज ऑफिसर,
और अगर स्टूडेंट में पोटेंशियल है अच्छा उसको पढ़ने की क्षमता है और आगे ऑफिसर कैडर में जाना चाहता है एनडीए के थ्रू आ सकता है। एनडीए में 12th के बाद एंट्री होती है और 3 साल तक एनडीए में उसका आर्मी ट्रेनिंग होती है, आर्मी ट्रेनिंग के साथ उसको डिग्री भी जाती है।
जी सर, सर अभी आगे जो हमारे बच्चे हैं वो अभी 12th के ही रिजल्ट आएंगे और उनके सामने ये सवाल होगा, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी है,
उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। और बताना चाहता हूँ कि जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड नाउ जिनकी एग्जाम मार्च में या मार्च अप्रैल में होने वाली है 12th क्लास में,
यही तो
12th क्लास पास होने के पहले ही वो एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं
एनडीए कॉम्पिटिशन। जी सर,
इससे उनका एक साल बच सकता है उसमें कंडीशन यही होती है कि आप अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपने 12th उस वक्त पास होनी चाहिए, बट आप उसकी एग्जाम आप पहले दे सकते हैं।
सर उसके लिए कुछ खास जैसे कहा है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए या बी प्लस, ऐसे कुछ शर्तें हैं उसके लिए?
ऐसे कंडीशंस नहीं है बट कंपटीशन का युग है और हर जगह कंपटीशन है, जहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है तो बेस्ट अवेलेबल इन द लॉट इसको सिलेक्ट किया जाता है।
जी सर,
तो जो आज तक का जो एवरेज देखा गया तो जिसको 70% मार्क्स है 70% मार्क्स के ऊपर ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली परसेंटेज उसके मानसिक क्षमता भी दिखाता है, परसेंटेज सिर्फ परसेंटेज नहीं है वो एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी
दिखाता है सर।
हाँ, तो क्योंकि उसके सवाल जो एग्जामिनेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसी तरह से होते, तो एक अगर सेकेंड डिवीजन में पास होने वाला स्टूडेंट है सडनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 90% स्कोर नहीं कर सकता, ये कर भी सकते हैं शायद एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरल ये है कि 70% आने की कोशिश तो करनी चाहिए।
फिर से मैं एक सवाल और करना चाहूंगी सर, जो मैंने स्पोर्ट्स के बारे में पहले कहा था कि जैसे अभी 12th में किसी को है 50% वगैरह ऐसे है और इधर उसने वो नेशनल प्लेयर है, तो वो भी क्या एनडीए के लिए उसके लिए कोई सीट होगा अलग से रिजर्व?
नहीं, एनडीए के लिए नहीं होता,
नहीं होता।
हाँ, यही स्पोर्ट्स कैटेगरी में सोल्जर्स इसमें आ सकते हैं वो, अगर उनके पास नेशनल या
हाँ, ये सवाल मेरे मन में आया तो मैंने आपको।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अपने कारोबार का प्रस्ताव लाओ और उचित ब्याज पर लोन पाओ। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बैंक शाखा जाएं।
अब अपने बारे में भी बताइए सर कि आपने इतने साल तक जॉब किया, कभी कभी कुछ कठिनाइयां आई और उसका आपने कुछ सामना किया होगा, कोई याद है आपकी नजर में ऐसी कोई याद है जो आपने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, ताकि हमारे युवाओं को भी प्रेरणा मिले कि हाँ उनके साथ भी कुछ ऐसे दौर आए तो वो उसे किस तरह से वो सुलह कर सकते हैं उसके साथ।
देखिए इसमें आर्मी में जब आप आते हो तो चाहे आप कोई भी सर्विसेस में हो या कोई भी सिचुएशन में हो, इन्फेंट्री में हो या सर्विसेज में हो या आर्मी में हो, मेडिकल डॉक्टर हो, कहीं पर भी हो, जब आप बॉर्डर एरिया में जब आप पोस्टिंग होती है किसी के भी साथ, आपकी सिचुएशन में आप बिकॉज जब बाहर से हमला होता है या कुछ ऐसी घटना होती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति या सब मिलिटेंट्स ने अटैक किया कैंप के ऊपर, वो नहीं देखा जाता है कि कौन है सामने वाला।
जी सर।
तो इसलिए जो आर्मी की ट्रेनिंग है वो उसी आधार पर की जाती है कि आपको एक तो होते जो अटैकिंग आर्म्स जो अटैक करते हैं, दूसरे बाकी जो सपोर्टिंग होते हैं उनमें सेल्फ डिफेंस की जरूरत होती है और समय पड़ने पर तो उनको आगे भी जाना पड़ता है।
तो
इससे ट्रेनिंग हमको दी जाती है और इस तरह से हमने 95 में मैं कुपवाड़ा क्षेत्र में था, कुपवाड़ा क्षेत्र में बहुत प्रभावित एरिया था उनका।
जी सर, और नाम भी काफी आता रहता है कुपवाड़ा का।
तो वहाँ पर पोस्टिंग में थे और हमारा कैंप बिल्कुल बॉर्डर के पास था।
जी सर।
तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन रोज आती थी कि हम अपने कार्बाइन लेकर साथ में सोते थे, तैयार पोजीशन में रहते थे, रात रात बैठे रहते थे और सोचते रहते थे कि क्या होगा। और मैं बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर भी देखा होगा, जैसे मैं अभी डीन हूँ क्वींस मेरे टेक्निकल
इंस्टीट्यूट,
यहाँ पर हम डिसेबल्ड सोल्जर्स को,
मतलब अभी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवा दे रहे हैं सर, क्वींस मेरी के लिए बहुत बढ़िया बात है सर ये।
तो वो सिचुएशन में मैं बहुत बार हमारे यहाँ जब हमारे सिविलियन फ्रेंड्स आते हैं मिलने के लिए जवानों को, तो बताता हूँ कि ये जवान वहाँ पर खड़ा होता है बॉर्डर, उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मेरे पीछे मेरा देश है।
जी।
मैंने अनुभव करी है वहाँ पे, जब हम रात को बैठते थे अपने एम्बुश लगा के बैठते थे, कोई वार्निंग मिलती है पहले ऐसा, जैसे कोई इंटीमेशन होती है इंटेलिजेंस के थ्रू, तो आप तैयार रहिए। सिचुएशन में हमने गए, मैंने बीइंग इन आरवीसी मैंने कुछ फेस टू फेस वार वगैरह का अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं रहा हूँ, वहाँ पर भी था और 2-3 बार पोस्टिंग्स हुई है ऐसे इलाके में जहाँ जान लटकी होती है और आपको पता नहीं होता कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है। तो एक इसी तरह से मैंने पट्टन में भी था, पट्टन श्रीनगर में, तो वहाँ अपने इसमें बैठे थे ऑफिस काम करते वक्त अचानक हमारे यूनिट पे फायर हुआ था।
वो
फायर हमारे हम बैठे थे और सर के ऊपर से गोलियां गई थी
तो
उसका निशाना खराब था हमारे लिए।
अच्छा, आपके लिए अच्छा था जो आज आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
तो अनुभव आए हैं और रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ
हमें जज्बा होता है ना सर,
एक बात तो है कि इन चीजों का हमें डर नहीं लगता,
नहीं लगता। जी सर,
डर नहीं लगा कि एक्चुअली वो डर का ख्याल भी नहीं आता।
जो मैंने शुरू में कहा ना सर, आंखों में देशभक्ति की जब चमक रहती है तो इन बातों का डर होना ही नहीं चाहिए, सही बात है।
और वैसे मुझे आपने बीच में स्पोर्ट्स का पूछा था, स्पोर्ट्स के इसके बारे में खास करके बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में भी स्पोर्ट्समैन तो था ही, मैं लॉन टेनिस यूनिवर्सिटी लॉन टेनिस खेला हूँ मैं जब मैं कॉलेज में था।
जी सर।
जब आर्मी में आने के बाद मुझे एक नया स्पोर्ट्स का चांस मिला, मैं बहुत फिक्र करना चाहूंगा, मुझे हॉर्स राइडिंग करने का मौका मिला।
बहुत बढ़िया सर।
और ये हॉर्स राइडिंग मैंने आर्मी में ही आने के बाद सीखी और इसके द्वारा मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता जीता हूँ और मैंने
बहुत मेडल। बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया।
ये एक बहुत ही चैलेंजिंग गेम जैसे फोटो है, जंपिंग है, इवेंटिंग है, तो ये मौका आर्मी में ही
मिलता है, सब कुछ आपको वहाँ मिलता है।
ये एक बहुत बड़ी चीज है, अदरवाइज आपने देखा होगा घोड़ों पे राइड करना ये मुमकिन नहीं है, और
बहुत
मैं तो शायद सपने में भी
जी सर, पर ये आर्मी में सिखाया आप।
ऐसे सिविलियंस जो जिनकी बहुत इच्छा रही है अपने जीवन में कि मैं आर्मी में या देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कारणवश, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आर्मी है उन्हीं में देश का जज्बा है, ऐसे सिविलियंस है जो जज्बा होता है मगर कुछ कारणवश, घर की परिस्थिति है, डोमेस्टिक रीजंस है, पेरेंट्स पेरेंटल प्रेशर है, इसमें कर पाते हैं, लेकिन उनके दिल में वो इच्छा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आर्मी में क्या है जो उसका नाम है टेरिटोरियल आर्मी, जिसको टीए बोलते हैं, टेरिटोरियल आर्मी, इसमें वो लोग जा सकते हैं जो जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं या कोई टेम्पररी जॉब में है, उसकी भी सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर आप वेबसाइट में टेरिटोरियल आर्मी अगर इसके बारे में जानकारी कोशिश करें
तो
आपके वेबसाइट में उसकी पात्रता क्या है, टर्म्स कंडीशंस क्या है,
ऐसा हो जाता है सर। कई लोगों के से सुनते हैं हमको तो आर्मी जाना था पर जिम्मेदारियां ऐसी थी नहीं जा पाए, तो उनमें जो जुनून होता है तो वो लोग ये काम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी आपने
ये बात बताई। अच्छा है और टेरिटोरियल आर्मी में सभी रैंक्स और सब कुछ इसी तरह है जैसे रेगुलर आर्मी में है।
जी सर।
और जो लोग टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक कंडीशन होती है कि एक हर साल में कुछ समय के लिए उनको उस बटालियन में जाके अपनी सर्विस
देनी पड़ती है।
उसके बाद
जैसे मैं सोच रही हूँ जैसे सर महेंद्र सिंह धोनी का एक उदाहरण इसी तरह का हो सकता है सर।
हाँ बिल्कुल
जी, मुझे दिमाग में आ गया अचानक कि आप जो बता रहे हैं तो जैसे
नहीं वो अलग है,
वो अलग है, मतलब वो उनका
वो ऑनरेरी कमीशन जो देते है ना वही
सर, उस तरह का है। हाँ यही मुझे एक डाउट लगा तो मैंने आपको पूछा।
हाँ ऑनरेरी कमीशन है वो अलग है,
वो अलग है।
हाँ मगर टेरिटोरियल आर्मी में अब उसमें ये है कि आप रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते उसके, लेकिन जिस वक्त आप जिस ड्यूरेशन के लिए उस ड्यूटी पे हो, सपोज आप 3 महीने के लिए टेरिटोरियल आर्मी में कुछ क्षेत्र में गए हो अपनी ड्यूटी पर,
जी
तो उस पीरियड के दौरान आपको वहाँ की रैंक तनख्वाह मिलती है, वहाँ का यूनिफॉर्म मिलता है, वहाँ की फैसिलिटी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने ही जा सकते हैं, अगर जो इच्छुक वो लोग होते हैं जो लगातार कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं।
तो ये बात बताई सर कि कुछ लोगों में ये होता है जुनून कि हमें भी आर्मी के लिए कुछ करना है और कुछ कारणवश वो उस वक्त नहीं जा पाते जब उनका करियर का एक स्पेशल पादन पे होते हैं, पर वो आगे चल के वो ये सोचते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी आपने बात बताई।
हाँ
बहुत बढ़िया।
ये टेरिटोरियल आर्मी का वेबसाइट में इसका हर चीज उसमें क्राइटेरिया, एज और मेडिकल फिटनेस, उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर भी ऐसी है जैसे रेगुलर आर्मी के लिए होती है,
वैसी ही है,
रैंक्स भी वैसी है जैसे रेगुलर आर्मी में।
तो इसके लिए कोई रिटर्न एग्जाम्स वगैरह भी होंगे सर ना?
रिटर्न एग्जाम भी होती है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है,
फिजिकल फिटनेस
इतना ही है कि वो टेरिटोरियल आर्मी है यानी उसमें आप इच्छा अनुसार जा सकते हैं,
इच्छा अनुसार जा सकते हैं। जी सर।
और श्रीनगर में और बहुत जगह राजस्थान में जयपुर में
बॉर्डर साइड में काफी लोग
हैं और टेरिटोरियल आर्मी में आप खास करके राजस्थान और श्रीनगर इधर के लोग बहुत
जहाँ बॉर्डर है वहाँ ऐसे जगह में
खेती करते हैं, काम करते हैं और जब हो जाने के बाद टेरिटोरियल आर्मी में जाके अपना ड्यूटी करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो
ये एक बहुत अच्छी बात हमें पता चली सर, इसकी जानकारी नहीं थी और शायद श्रोताओं में से भी किसी को नहीं होगी।
हंस क्यों रहे हो? शर्मा जी के घर में टॉयलेट है पर आदत नहीं है।
शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाएं, खुले में नहीं, शौचालय की आदत पक्की।
मैं जरूर नए युवकों को संदेश देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी सोच को ये करना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं।
जी सर।
उसे हमें अपने फ्रेम के बाहर आना पड़ेगा।
जी
अगर आप करना चाहते हैं हमें अपने दायरे से बाहर आना होगा,
बाहर आना होगा।
अगर अगर हम ये सोचेंगे कि मैं इस गांव में हूँ,
हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही आप,
तो यही रह के मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है।
जी सर।
और आपको अगर जीवन में कुछ करना है तो आपने अपने दायरे के बाहर आना होगा और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमें प्रगति के लिए बाहर आना ही होगा।
जी सर।
दूसरा ये है कि ये जो मेरे श्रोता आज के कार्यक्रम में सुन रहे हैं,
जी सर,
ये जहाँ पर भी मैं मुझे मौका मिलता है विद्यार्थियों से बात करने का, मैं उनको संदेश देता हूँ कि हर इंसान में, हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ क्षमता है।
क्षमता है,
भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है।
जी सर।
लेकिन हमें अपनी हीन भावना ऐसा होती है कि हम खुद को रिजेक्ट करते हैं हर जगह। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे किसी को हमने बोला कि आप गाना गाइए, तो वो इंसान खुद को रिजेक्ट करता है, मेरी आवाज खराब थी, मैं गा नहीं पाता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।
सही बात।
तो ये अपने अंदर की हीन भावना है जिसकी वजह से हम अपने खुद का टैलेंट हम
तो क्षमताओं को खो देते हैं, जो होती है उन्हें खो देते,
तो उभरने नहीं देते। तो श्रोता ये बात ध्यान रखे कि जहाँ पर उनको मौका मिलता है दे मस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ। अगर सवाल आया है जहन में तो उसको पूछना चाहिए अपने टीचर से, अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, गुरुजनों से। उस सवाल को दिल में नहीं रखना चाहिए जिस वजह से कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। सवाल चाहे कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सवाल सवाल होता है।
जी सर।
अगर दिमाग में रहने से वो छोटा बन जाता है, वो फिर आगे निकलता नहीं है, उसका चाबी नहीं निकलती फिर। इसलिए श्रोतागणों को निवेदन है कि वो अपने हर सवाल को बाहर आने दे, उतना उसकी कला को बाहर आने दे, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे गेम्स हो, चाहे सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, जो भी कलाकारी
हो,
उभारनी चाहिए और तभी आपकी प्रगति होगी। नहीं तो हम पीछे पीछे रहते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे खुद को।
बहुत सही बात
है। हमारा काम है परफॉर्म करना, रिजेक्ट करना काम है अगले का, जो आपको देखने वाला है उसको अपना काम करने दो।
और आपसे ये प्रेरणा तो वो लेंगे ही। आपने जो शुरू की बात कही कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और आपने किस तरह से सामना करके आज इतना अच्छा काम, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आप देश को दे रहे हैं सर, और ये मोटिवेशन बहुत है हमारे बच्चों के लिए, सुनने वाले श्रोताओं के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से धन्यवाद कहूंगी सर। और पेपो रेडियो की ओर से आपको फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रोग्राम की समाप्ति करती हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद।
ये है नेक्स्ट 100 इयर्स मीडिया नेटवर्क, मीडिया नेटवर्क, और आप सुन रहे हैं प्रेपो एजुकेशन रेडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।